मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 11 जुलाई 2019 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल मैं फास्टनेस के बारे में आप सबसे बातें कर रहा हूं और कल मेरे पास इस विषय पर जितने मेल आए उन सबको देखने के बाद सच पूछे तो मेरा उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। लेकिन आप सब घबराए नहीं, इस टॉपिक को अब बहुत ज्यादा दिन तक चलाना मुझे लगता है कि जब व्यावहारिक नहीं होगा। कल खासकर मेल में ये स्पेशली पूछा गया था, जो मुझे सही भी लगता है कि सर मैं बहुत ज्यादा इस संकट का शिकार हो चुका हूं और बहुत ज्यादा इसको लेकर के परेशान भी हूं, तो अब इससे कैसे छुटकारा पा सकें इसके बारे में कुछ बताएं। और इस तरह के कई मेल मेरे पास आए तो दोस्तों डेफिनेटली उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो शुरुआत होती है इन सब चीज की वो इस बात से होती है कि आप पहले अपनी परेशानी को रियलाइज करें। इनफैक्ट सच पूछिए तो हम सब इसके एडिक्ट हो चुके हैं, जिसको कह लीजिए कि तेजी से चलने, तेजी से काम करने, हर काम में तेजी ले आने की हमें एक लत पड़ गई है। जी हाँ, मैं जानबूझ करके कह रहा हूं कि लत पड़ गई है। और देखिए, जब किसी चीज की लत पड़ जाती है और खासकर फास्टनेस जैसी चीज की, तो पहली बात तो यह लगता है हमें कि यह तो बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है, इसमें गलत कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यदि उनका ध्यान इस परेशानी की ओर दिलाया जाए, संकट की ओर दिलाया जाए, इससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हो सकती हैं उनके बारे में दिलाया जाए, और सुनने के बाद जब आपको रियलाइज होने लगे कि नहीं, वास्तव में प्रॉब्लम है, तब फिर अगला स्टेज होता है उसके निवारण का, यानी कि उससे मुक्ति पाने का। तो मुझे कल के मेल से जो आभास हुआ खासकर वो ये कि नहीं, स्टूडेंट आप सब जो मेरे प्रिय श्रोता हैं उसमें स्टूडेंट भी शामिल हैं, उन्हें लगने लगा है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ही। जैसे यदि मैं स्टूडेंट की बात करूं तो अब आप देखिए कि जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, अगर आप अपने एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, सिलेबस के तहत चीजें पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उसे बहुत तेजी से पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि जो हमारी चेतना है उसको उस तरीके से अपने में रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी। और जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं ले रहे हैं। आप देखिए, किताब के स्वरूप को देखिए, तो किताब का जो कवर पेज होता है उसको ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती है, उसके अंदर के जो अक्षर हैं उन अक्षरों को बेहतर तरीके से प्रिंट करने की कोशिश की जाती है ताकि आपके आंखों को वो अक्षर अच्छे लगे। फिर अंदर कुछ चित्र भी दिए जाते हैं, उनमें लाइनों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, साइड में जगह छोड़ी जाती है, ताकि ये जो पेज है ये बहुत ज्यादा आपको भरा भरा सा, ठूसा ठूसा सा न लगे। अदरवाइज तो उसमें भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारी आंखें जिन चीजों को देखती हैं, याद रखिए, उसे भी ग्रहण करती हैं। ऐसा नहीं कि हम जिन चीजों को पढ़ रहे हैं केवल उसे ही हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है, हमारी आंखें भी काम कर रही हैं ना। आप आंखें बंद करके भी अगर कोई चीज सुनते हैं तो आप देखिए कि जो चीज आप सुन रहे होते हैं उस चीज के अनुकूल आपके दिमाग में इमेजेस उभरने शुरू हो जाते हैं। पढ़ने के दौरान भी यही होता है, और पढ़ने के दौरान तो पैरेलल दो इमेजेस हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। पहला वह कि हमारी आंखें खुली हैं और हम किताब के पृष्ठों को देख रहे हैं, उसमें अक्षर छपे हुए हैं, कुछ अक्षर छोटे हैं, कुछ अक्षर बड़े हैं, कुछ अक्षर तिरछे तरीके से लिखे हुए हैं, इसके बाद चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों को भी आंख देख रहा है और देख करके अब दिमाग के अंदर सहेज रहा है। तो जब हम आंख खोलकर किसी चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आप देखें कि दिमाग को कितनी दिशाओं में काम करना पड़ता है। तो अगर दिमाग को इतनी दिशाओं में काम करने देना है ताकि वो सही तरीके से उन चीजों को हमारे मस्तिष्क में अंकित कर सके, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसे उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए? लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमने एक टाइम टेबल बना लिया है कि आज इतने पेज पढ़ना ही है, और फिर अगर हम इत्मीनान के साथ लगता है कि इतने पेज पूरे नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ा देते हैं, उतने टाइम में हम उन पेजेस को समाप्त भी कर लेते हैं, लेकिन उसे समझने का काम, उसे याद रखने का काम, जो हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य था, वह लगभग लगभग पूरा नहीं हो पाता। दोस्तों, इसीलिए दिमाग की जो क्षमता होती है वह सही मायने में इत्मीनान के साथ उभर कर आती है। दिमाग को आप जितना इत्मीनान में रख जितने इत्मीनान में रखेंगे, उसको जितना अधिक तनाव से रहित रखेंगे, उतना ही दिमाग की जो रचनात्मकता है, जो आप यूं कह लीजिए जो कंस्ट्रक्टिव उसकी पावर है, जो क्रिएटिविटी है, वो उतनी अधिक से अधिक उभर कर आएगी। हम इसको अगर तेजी से डाल देंगे तो अपना काम तो करेगी ही, लेकिन उसमें वो आप कह लीजिए रचनात्मकता की जो प्रखरता होती है, जो ताप होती है, जो ऊर्जा होती है, वह दिखाई नहीं देगी, या यूं कह लीजिए कि वो आ ही नहीं सकती, सामने आ ही नहीं सकती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इसमें देखिए कि कुछ महान लोगों के नाम हैं और वो कैसे करते थे, कैसे काम करते थे। मैं एक पुस्तक का एक अंश है वही आपको पढ़कर सुना रहा हूं। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया, चार्ल्स डार्विन बिना किसी हिचक के खुद को स्लो थिंकर कहना और कहलवाना पसंद करते थे। मतलब वो चाहते थे कि मुझे लोग स्लो थिंकर कहें। स्लो तरीके से वो थिंकिंग भी करते थे, लेकिन उन्होंने स्लो तरीके से थिंकिंग करके जो चीजें हमें दे दी, फास्ट से फास्ट थिंकिंग करने वाला व्यक्ति भी उतना कुछ नहीं दे पाया। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अपने दफ्तर में बैठकर घंटों खुले आसमान को निहारा करते थे। अब आप देखिए खुले आसमान को देख रहे हैं, खुले आसमान को देख करके वो कुछ ढूंढ नहीं रहे, वहां तारों को गिन नहीं रहे, वहां कोई शोध नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि वो अपने दिमाग को वो लिबर्टी दे रहे हैं, इत्मीनान प्रदान कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए अंग्रेजी में कहना चाहे तो रिलैक्स्ड कर रहे हैं, ताकि उस दिमाग की क्षमता अपने आप में बढ़ सके। दोस्तों आप सबने हो सकता है कि आर्थर कॉनन डॉयल की कहानियां पढ़ी हो। इसमें है कि आर्थर कॉनन डॉयल की कहानियों में भी हमने पढ़ा है कि कैसे क्राइम वाली जगहों पर जुर्म के सबूत ढूंढते समय शरलॉक होम्स एक गहरी तंद्रा में डूब जाता था, गहरी तंद्रा में, जिसे हम सब अपनी बोलचाल की भाषा में मेडिटेटिव स्टेट कहते हैं। उसकी आंखों में एक ड्रीमी वेकेंट एक्सप्रेशन हुआ करता था, मतलब एक शून्यता आंखों में। आप देखेंगे तो उसका ऐसा लगेगा जैसे आंखों में शून्यता है बिल्कुल, लेकिन कुछ सोच रही है आंखें, कुछ चल रहा है आंखों में, और ऐसा लगेगा मानो कि वो शून्य में कुछ देख रहा हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे प्रमाण है जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को रिलैक्स्ड स्थिति में ला करके इसकी जो रचनात्मक क्षमता है उसे ज्यादा से ज्यादा सामने ला सकते हैं। और सीधी सी बात है कि जब हमारी दिमाग की रचनात्मक क्षमता उभर कर आएगी तो वो जो कुछ भी देगी क्वांटिटी के रूप में तो वो थोड़ी होगी, मतलब उसकी मात्रा ज्यादा नहीं होगी, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से, कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से, नवीनता मौलिकता की दृष्टि से वह अद्भुत होगी, और सही मायने में वही हमारे समाज के प्रति सही देन को स्थापित भी करेगी। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।